चौथा प्रश्न, आप तो बड़ी सरलता और सहजता से कह देते हैं कि दुखी तुम अपने कारण हो, चाहो तो दुख से मुक्त हो जाओ, कि अपने ही बनाए जालों में फंसे हो, चाहो तो निकल आओ। आपके लिए तो बात बड़ी छोटी सी है, पर इस छोटी सी बात को आपसे सुन सुन के भी हम क्यों नहीं समझ पाते हैं, कृपा करके कहिए। दुख दुख है ऐसा तुमने अभी जाना नहीं, अभी तुम्हें दुख में सुख का भ्रम बना हुआ है, इसलिए तुम सुन सुन के भी नहीं समझ पाते। मैं तुमसे कहता हूं कि वो जो दूर दिखाई पड़ रही मृग मरीचिका है, वो जो मरुद्धान दिखाई पड़ रहा है मरुस्थल में, है नहीं, सिर्फ भ्रांति। मेरी बात तुम सुन लेते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें तो कहती हैं कि हमें दिखाई पड़ रहा है, और दिखाई तो पड़ ही रहा है। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि इस तरह तो तुम्हारी आंखों ने तुम्हें पहले भी धोखा दिया था, और बहुत पड़ावों पर भी तुमको दिखाई पड़ा था मरुद्धान, और तब भी तुमसे किसी ने कहा था कि मरुद्धान है नहीं, सिर्फ आंख का धोखा है, सिर्फ मृग मरीच का है, दिखाई पड़ता है नहीं, तब भी तुमने ये कहा था, लेकिन हमें तो दिखाई पड़ता है। इतने बार के अनुभव के बाद तुम सीखे नहीं, तुम्हारा मन कहता है कि हो सकता है इतने सब अनुभवों में हम गलत थे, कौन जाने इस बार सही हो, ऐसी दुविधा है। तुम्हें लगता है इस बार शायद हो जाए, इस स्त्री से सुख नहीं मिला, उस स्त्री से सुख नहीं मिला, लेकिन ये जो तीसरी स्त्री शायद इससे मिल जाए, कौन जाने। इससे तो अभी तक हमने जाना नहीं, एक स्त्री से थक गए, दो स्त्रियों से थक गए, हजार स्त्रियों से थक गए, लेकिन पृथ्वी तो और अनंत स्त्रियों से भरी, शायद कोई स्त्री हो जिससे मिल जाए, शायद जिसके लिए तुम बनाए गए हो। हर आदमी को ये भ्रांति है कि कोई एक स्त्री है कहीं जिसके लिए वो बनाया गया है, और जो उसके लिए बनाई गई, जब मिलन हो जाएगा तो रसधार बहेगी, वो मिलन कभी होता नहीं, वो कभी हुआ ही नहीं, मगर भ्रांति तो बनी रहती है। स्त्री से मुक्त नहीं हो पाते तुम, एक से मुक्त हो जाते, दूसरी से मुक्त हो जाते, तीसरी से मुक्त हो जाते, लेकिन स्त्री से नहीं मुक्त हो पाते। अभी तुम्हें ये तो दिखाई पड़ा कि ये आ नाम की स्त्री ने दुख दिया, ये बा नाम की स्त्री ने दुख दिया, ये सा नाम की स्त्री ने दुख दिया, लेकिन स्त्री मात्र दुख देती, या पुरुष मात्र दुख देता, या संबंध मात्र दुख देता है, इस बात का तुम्हें बोध नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं तुम सुन भी लेते हो, किसी किसी उड़ान के क्षण में जब तुम मेरे साथ थोड़े उड़ने लगते हो आकाश में, तो झलक भी मारता है सत्य की, शायद ठीक ही होगा, मगर शायद बना रहता होगा ही, ऐसा ही है, ऐसा सुनिश्चय नहीं बन पाता। मैंने सुना मुल्ला नसुद्दीन से उसकी प्रेमिका कह रही थी, विवाह के बाद मैं तुम्हारे सभी दुख बांट लूंगी। मुल्ला ने कहा, परंतु मैं दुखी कहा हूं? उस प्रेमिका ने कहा, मैं विवाह के बाद की बात कर रहे हैं। जीवन में जो सबसे बड़ी कठिनाई है समझने की, वो आशा भ्रामक है, यह समझने की। आशा नए नए स्वप्न सजाए जाती, तो एक तो यह कि तुम सुनते मेरी बात, तुम्हें मुझसे लगाव है, तो तुम्हें मेरी बात में सत्य की भी झलक मालूम होती, लेकिन तुम्हें अपने से लगाव है वो ज्यादा है, मुझसे तुम्हें लगाव है वो भी इतना ज्यादा नहीं जितना लगाव तुम्हें अपने से है। तुम ऐसा मत समझना कि मनोहर लाल को ही ऐसा है, सभी को ऐसा है, सभी लालों को ऐसा है। तुम्हें अपने से लगाव ज्यादा है, मुझसे लगाव है सच, मगर वो इतना नहीं है कि तुम्हें जो इतना अपने से है। इसलिए जब भी निर्णय होगा जिंदगी में, तुम सदा अपने तई निर्णय करोगे, तुम मेरा निर्णय न मान सकोगे, कठिनाई वहां है, और वहीं संघर्ष होना है, गुरु और शिष्य के बीच वही युद्ध है। तुमने देखा ना महाभारत का युद्ध हुआ, वो नकली युद्ध, उसमें कुछ खास नहीं है। असली युद्ध तो कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ, वो रथ पर जिससे गीता पैदा हुई, मंथन निकला, असली युद्ध तो उनके बीच हुआ। बाकी तो ठीक था, लोग मरे गए, वैसे ही मर जाते, कोई ना भी मारता तो भी मर जाते, वो मरने ही थे, कोई अभी तक जिंदा नहीं रहते, तो वो तो कोई खास बात ना थी, होनी ही थी, हो गई। इस तरह मरे कि उस तरह मरे, खाट पर मरे कि युद्ध के मैदान में मरे, इससे क्या बहुत भेद पड़ता है। असली युद्ध दूसरा ही हुआ, असली महाभारत मेरे देखे रथ के ऊपर हुआ, कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ। वो बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी, उस युद्ध में अर्जुन हार गया, ये उसका सौभाग्य था। अगर जीत जाता तो दुर्भाग्य होता, जीत भी सकता था। बहुत बार दुर्भाग्य से शिष्य जीत जाता है तो भटक जाता है। गुरु की जीत में ही तुम्हारी जीत है। संघर्ष यही है कि गुरु को चुने कि अपने को चुने, अपने को बचाएं कि गुरु को बचाएं। जैसे ही तुम गुरु के पास आए, ये उपद्रव शुरू होता है कि किसको बचाना, किसकी सुनना, किसकी मानना। मैं तुमसे इतना ही कहता हूं, अपनी मान के तो तुम इतने दिन चले हो, अब कब तक और अपनी ही मान कर चलोगे। अजुहूं चेत गमार, इतने दिन मानने के बाद मिला क्या है, हाथ लाई क्या है, हाथ में क्या है, रिक्त, घड़ा खाली, भर भर के थक गए हो, कुछ भरा नहीं, जरा भी नहीं भरा है, दौड़ दौड़ के थक गए हो, बूंद भी नहीं मिली। तृप्ति तो दूर, तृप्ति की बूंद भी नहीं मिली, तृप्ति के सरोवर तो बहुत दूर। सपनों ही सपनों में चलते रहे हो। बुद्धिमान वही है जो ये सत्य देख ले कि अब तक मैं भटका, और भटकने का कारण यह है कि मैंने अपनी मानी। अब मैं किसी की मानूं जो मुझसे बिल्कुल अन्य हो, जो मुझसे बिल्कुल भिन्न हो, जहां मुझे मरुद्धान दिखता है वहां उसे कुछ भी ना दिखाई पड़ता हो, उसकी मानूं। जहां मुझे माया के हजार प्रलोभन मालूम पड़ते हैं, उसे कोई प्रलोभन न मालूम पड़ता हो, उसकी मानूं। अपने तई तो खूब चल लिया, थोड़े दिन किसी और की मान के चल लूं। अर्जुन को हारने दो, कृष्ण को जीतने दो, तो बात बड़ी सरल है, अभी हो जाए। लेकिन तुम सोचते हो कि तुम जीत जाओ तो बात सरल कभी भी ना हो पाएगी। फिर तीसरा भी कारण, तुम अभी तक खाली हाथ नहीं बैठे रहे हो, कुछ ना कुछ करते रहे हो, तो बहुत सी चीजें अधूरी पड़ी। सच तो ये सभी अधूरा पड़ा है, क्या पूरा होता है, संसार में कभी कुछ पूरा नहीं होता, परमात्मा में कभी कुछ अधूरा नहीं और संसार में कभी कुछ पूरा नहीं। यहां कोई कहानी कभी इति पर कहां आती, फिल्में खत्म हो जाती दी एंड, मगर जिंदगी में कौन कहानी कभी इति पर आती, कोई कहानी इति पर नहीं आती, मध्य में ही शुरू होती, मध्य में ही अंत हो जाती, अचानक शुरू हो जाती। एक बच्चा पैदा हुआ, अचानक कहानी शुरू हो गई, अधूरे में शुरू हो गई, जिंदगी चल रही थी, हजारों लोग जिंदा थे, लाखों लोग जिंदा थे, जाल फैला हुआ था, वो बच्चा उस जाल में आ गया, इन हजारों कहानियों में एक कहानी और जुड़ गई, मगर ये कहानियां तो चली रही थी, ये बच्चा इन्हीं कहानियों का हिस्सा बनेगी। इसकी माँ की एक कहानी थी, इसकी बाप की एक कहानी थी, उनकी कहानियों में यह हिस्सा बन गया, यह अचानक उनकी कहानी में प्रविष्ट हो गया। ऐसा ही समझो कि एक नाटक चल रहा हो, तुम दर्शक में की जगह बैठे थे, फिर अचानक बीच में उठे और चले गए मंच पे, वहां राम और सीता बात कर रहे हैं, रामलीला चल रही, तुम बीच बीच में बोलने लगे, तुम्हें भगाया जाएगा, क्योंकि कोई मंच ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि ये क्या मामला, आप कैसे आ गए। वो मैनेजर दौड़ेगा, पर्दा गिराएगा, तुम्हें निकाल बाहर करेगा, लेकिन जिंदगी में ऐसे ही चल रहा, पति पत्नी की बात चल रही थी, आप अचानक आ गए, ये बेटा पैदा हो गए, अब इनको न किसी ने पार्ट दिया है, न किसी ने बुलाया है, कोई इनकी प्रतीक्षा भी नहीं कर रहा था। बर्थ कंट्रोल के भी उपाय किए जा रहे थे और ये आ गए, नसबंदी भी काम नहीं आई और ये आ गए। अब इन्होंने सब हिस्सा बदल दिया। एक छोटा सा बच्चा सारी कहानी को बदल देता है, क्योंकि छोटा बच्चा कुछ छोटा मोटा घटना नहीं है, वो सारी कहानी बदल देगा। अब रात बाप को सोने नहीं देगा। मुल्ला नसुद्दीन एक दिन कह रहा था अपनी पत्नी से कि मालूम होता है सुबह हो गई अब उठूं। पत्नी ने कहा कैसे पता चला अभी तो अंधेरा। उसने कहा कि बेटा सो गया, सुबह हो गई, रात भर तो इसके मारे में नहीं सो पाता। सुबह होते होते सोते ही बेटे भी खूब तरकीब से, रात तो उपद्रव मचाते। अब ये दिन भर रात भर का थका मांदा दफ्तर जाएगा, कभी मालिक से झंझट हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा वो बेटा रात भर नहीं सोने दिया, उसने इसके दफ्तर को भी बदल दिया, मालिक से झगड़ा हो गया, नौकरी खत्म हो गई, गांव बदलना पड़ा, ये सब चलेगा। पत्नी धीरे धीरे पति की फिक्र छोड़ के बेटे की फिक्र करेगी। स्वभावतः बेटे को ज्यादा फिक्र की जरूरत है, पति धीरे 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 हाशिए में पड़ जाएगा। कभी वक्त बचेगा तो उनकी फिक्र कर लेगी। इसलिए कोई पति बेटों को पसंद नहीं करता, क्योंकि उनके आती से पत्नी पति की रही नहीं जाती। जैसे मां बनी स्त्री वो बेटे की हुई, अब पति ठीक है, वो रह गए, उनकी हैसियत एक नौकर चाकर की रह गई। और ये बेटा सब तरह से तानाशाह होता, छोटे बच्चे बड़े तानाशाह होते, हर मांग पूरी होनी चाहिए, इसी वक्त पूरी होनी चाहिए, ये सारी जिंदगी की कहानी को बदल देगा। ऐसे बीच में अचानक कहानी आ जाती और फिर एक दिन अचानक खत्म हो जाती, मगर हमेशा बीच में कोई चीज कभी पूरी नहीं होती। तो तुम जब मेरी बात सुनते हो तो तुम्हारी कहानी तो चल रही है, तुमने बहुत से जाल बो रखे हैं, बहुत सी दुकानें चला रखी, बहुत से व्यवसाय कर रखे, उन सब में तुमने खूब अपनी जीवन ऊर्जा न्यस्त की है, इन्वेस्ट की है। अचानक मेरी बात सुन के अगर तुम्हें ठीक लग जाए तो उसका मतलब हुआ कि अब तक तुमने जो किया सब व्यर्थ था, सब व्यर्थ गया। अगर मेरी बात ठीक लग जाए तो तुम्हारा व्यवसाय जो तुमने अब तक किया था, किसी भी ढंग का तुमने अब तक जीवन के नाम पर जो जो व्यापार किए थे, जो जो संबंध बनाए थे, जो जो आशाएं योजनाएं बनाई थी, वो सब व्यर्थ हो गई। इतनी हिम्मत बहुत कम लोगों में होती, वो कहते हैं कुछ तो बचा लो, इतनी जिंदगी लगाई, 30 साल हो गए कि 40 साल के 50 साल से इस धन में लगा हुआ था। एक मित्र मेरे पास आते, वो कोई 15-20 साल से चीफ मिनिस्टर होने की कोशिश कर रहे, मिनिस्टर तक पहुंच गए, वो कहते हैं कि आपकी बात भी मुझे बिल्कुल ठीक लगती है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि एक दफा चीफ मिनिस्टर भर हो जाऊं फिर मैं संन्यास ले लूंगा, मगर एक दफा चीफ मिनिस्टर। आखिर 30 साल से मेहनत कर रहा हूं, 1947 से लेके जब से देश आजाद हुआ वो मेहनत कर रहे हैं, और कहते हैं कि अब बिल्कुल पहुंच गया हूं, करीबी है मामला, कभी भी घट जाए। अब ये 30 साल जो उन्होंने न्यस्त कर दिए हैं, इनसे मोह हो गया है। वो कहते हैं कि छोड़ना तो ये तो मुझे समझ में आता, ये भी समझ में आता, कुछ सार नहीं, मिनिस्टर होकर देख लिया कुछ सार नहीं, मगर 30 साल से मेहनत कर रहा हूं, अब इसको पूरा कर लेने दे, चीफ मिनिस्टर होकर देख लेने दे। कहते हैं मालूम भी है मुझे कि उसमें भी कुछ सार नहीं, क्योंकि जब मिनिस्ट्री में कुछ नहीं मिला, पहले वो डिप्टी मिनिस्टर थे, तब वो मिनिस्टर के पीछे पड़े थे, डिप्टी मिनिस्टर थे तब कहते थे डिप्टी मिनिस्ट्री में कुछ सार नहीं, फिर मिनिस्टर हो गए अब कहते हैं इसमें कुछ सार नहीं। मैंने उनसे कहा तुम चीफ मिनिस्टर होकर भी यही कहोगे और फिर तुमको भी नशा चढ़ेगा कि अब प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो जाए, और उस तुम्हारी कभी कुछ उम्र भी नहीं, अब देखो मुरारजी तो 82 के हुए और पहुंच गए। अगर किसी मुर्दे को भी कब्र में खबर मिल जाए कि इलेक्शन हो रहा है तो उठ के खड़े हो जाए, चुनाव लड़ने लगे कि चलो एक दफा तो कोशिश कर लें, और मरते दम तक महत्वाकांक्षा नहीं जाती। तो उनको मैंने कहा कि तुम्हारी तो अभी ज्यादा कोई उम्र भी नहीं है, 85 साल की उम्र है, अगर कोशिश करते रहो तो 82 तक तुम भी पहुंच ही जाओगे धक्के खाते खाते। कहावत है ना, 100-100 जूता खाएं तमाशा घुस के देखे, कितने पढ़ने दो जूते कोई फिक्र नहीं, लेकिन एक दफा घुस के तमाशा देख ले। तो तुम भी देख लोगे घुस के तमाशा, लेकिन छोड़ोगे कब? वो कहते हैं आपकी बात भी मुझे जचती है और जूते भी मैं काफी खा रहा हूं और काफी खा लिए, मगर, और वो मगर बड़ा अटका देता है। वो कहते 30 साल खराब किए, आप ये भी तो सोचो, अब 6 महीने की बात और है। तो तुमने जो निस्त किया है वो तुम्हें अटकाता है। तुम कहते हो इतना जीवन दांव पर लगाया, अब करीब आने को, और हमेशा ही सब करीब आने को, ख्याल रखना यही तो मजा है जिंदगी का, यही तो प्रलोभन है कि सदा लगता है अब आए अब आए, आता ही है, होता ही है, आज नहीं हुआ तो कल हो जाने ही वाला है, कल सुबह और देख लें, ऐसे आशा सरकती जाती। और पीछे जो उपद्रव खड़े कर रखे उनको पूरा करने का मन बना रहता। मैंने सुना मुल्ला नसुद्दीन का नौकर उससे कह रहा था, बड़े मियां मोची कह रहा है कि जूते की मरम्मत के पैसे उसे अभी तक नहीं मिले। मुल्ला नसुद्दीन ने कहा ठीक है, उससे कह देना कि उसकी बारी आने पे मिल जाएंगे, अभी तो मुझे जूते के दाम ही चुकाने, ऐसी उलझने, अभी जूते के दाम नहीं चुके, अब मोची ने सुधारा है जूता, उसकी तो अभी सवाल ही कहां उठता है, अभी तो पंक्तिबद्ध जब आएगा नंबर देख लेंगे। तो तुम्हारे पीछे क्यों लगा है हजारों उलझनों का? तुम्हें मेरी बात सुनाई भी पड़ती है, समझ भी पड़ती है, फिर भी समझ नहीं पड़ पाती। साहस नहीं है तुमने इतना कि तुम एक बार भी पर्दा गिरा दो, कहो कि ठीक है ये नाटक हो चुका। और जब तक तुम अधूरे में रोकने को राजी नहीं हो कभी नहीं रोक पाओगे, तुम मर जाओगे, ये नाटक जारी रहेगा, मरते दम तक भी ये बना रहेगा। तुम क्या सोचते हो मरते दम ऐसी कोई घड़ी आ जाएगी जब तुम पाओगे सब जाल उलझ गया, सब काम सुलझ गया? ये कभी नहीं होने वाला। अपनी उलझन से किसी तरह बचे तो बेटे बेटियां पैदा हो जाएंगे, उनकी उलझन है, उनसे बचे तो उनके पोते पैदा हो जाएंगे, उनकी उलझन है, उलझन तो जारी रहती, एक दिन मौत आ जाती। इसके पहले कि मौत आए संन्यास को आने दो, इसके पहले कि मौत आए समाधि को आने दो। और ध्यान रखना मौत पूछ के नहीं आती, यही अड़चन है, मौत तुमसे पूछती ही नहीं, इसलिए आती है, अगर मौत भी पूछ के आती होती तो कोई मरता ही नहीं। तुम जरा सोचो मेरी बात पर, अगर मौत भी पूछ के आती होती चिट्ठी लिख देती आने के पहले कि अब मेरे आने का ख्याल है, आपका क्या विचार? तुम कहते जरा ठहर माई, अभी तो कुछ सब उलझन पड़ी है सुलझा लेने दे, 1-2 साल की बात है, चीफ मिनिस्टर तो हो जाने दे, फिर आ जाना, ऐसी क्या जल्दी पड़ी, अभी और इतने लोग उनको उठा कर ले जा, जो चीफ मिनिस्टर है उसको उठा कर ले जा, तो अभी फिर मेरा भी नंबर आ जाए। लेकिन मौत पूछ के नहीं आती, इसलिए आती, नहीं तो आ ही नहीं सकती थी। समाधि के साथ झंझट है, तुम बुलाओगे तो आएगी, मौत बिन बुलाए आती, समाधि बुलाए बुलाए भी मुश्किल से आती, तुम पुकारोगे तो आएगी। बिना बुलाए मेहमान 2 कौड़ी के होते, असली मेहमानों को बुलाना हो तो बड़ा आयोजन करना होता, निमंत्रण भेजने पड़ते हैं, समझाना बुझाना होता है, आने के लिए राजी करना होता। जितना बड़ा मेहमान बुलाओगे उतनी ही प्रतीक्षा और प्रार्थना। समाधि को बुलाते हो, ये मैं जो तुमसे कह रहा हूँ सब समाधि को बुलाने का आयोजन है, ये सब तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे पाती लिखो समाधि को, कैसे पत्र लिखो, कैसे प्रेम पत्र लिखो परमात्मा को कि वो आ जाए। तुम कहते हो जरूर लिखेंगे, मगर आज नहीं, कल लिखेंगे, अभी थोड़े दिन संसार को और। और मेरी बात तुम गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हारा अनुभव भी कहता है कि मेरी बात सही है। तुम्हारी अड़चन ये है, तुम्हारा अनुभव भी कहता है कि बात तो मेरी सही है, जो मैं कह रहा हूं ठीक ही कह रहा हूं कि यहां कुछ है नहीं, तुम्हारा अनुभव भी कहता है, लेकिन तुम्हारी आशा और तुम्हारे अनुभव में मेल नहीं है, कभी नहीं होता, आशा हमेशा अनुभव के विपरीत जाती है, अनुभव कुछ कहता है आशा कुछ कहती, आशा अनुभव से उल्टी बातें बोलती है, वो कहती कल तक दुख मिला ये सच है लेकिन कल भी मिलेगा, इसका क्या पक्का है, कल सुख मिल सकता है, थोड़ी तो और कोशिश कर लो। जिस दिन तुम्हें मेरी बात ठीक ठीक समझ में आ जाए, ठीक ठीक समझने से मेरा मतलब है जिस दिन तुम दांव लगाने को राजी हो जाओ, उस दिन तुम समझ पाओगे फुगा को वसल में आराम क्या हो, जुदाई का तसव्वुर बंध रहा है। तब तो तुम सुख में भी आराम न पाओगे, आने वाले सुख की तो बात छोड़ो, आ गए सुख में भी तुम आराम न पाओगे। फुगा को वसल में आराम क्या हो, जुदाई का तसव्वुर बंध रहा है। तब तुम जानोगे ये जो मिलन हुआ है इसमें भी क्या खाक आराम, क्योंकि विदाई का क्षण करीब आ रहा है। अभी तो जो मिला नहीं है उसकी आशा में जी रहे हो, समझ जब आती है तो जो मिल भी जाता है उसमें भी आशा नहीं रहती, उसकी भी विदाई का क्षण करीब आया जा रहा, जल्दी ही विदा होना पड़ेगा। रात आ गई सुबह होगी, सुबह हो गई सांझ होगी, जिंदगी बदलती चली जाती, यहां कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब बदल रहा है। इस सारे बदलते हुए वर्तुल के बीच में सिर्फ एक चीज स्थिर है, समाधि, चैतन्य, साक्षी, उस एक को पालो तो तुमने सब पा लिया, उस एक को गमाया तो सब गमाया।